ओम ब्रह्म सत्यम
सर्वज्ञ।
दूसरा विषय आपके सामने है ईश्वर परायण जीवन। आज हमें से बहुत से ऐसे व्यक्ति होंगे जो अध्यात्म मार्ग में नए हैं या जिनको रेगुलर सत्संग सुनने की आदत नहीं है, इसलिए उनके वास्ते ये शब्द ही कठिन हो सकता है। ईश्वर परायण जीवन, शायद वो ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। इसको सरल रूप में समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर परायण जीवन का अर्थ होता है ईश्वर के लिए जीना, लेकिन ऐसे लोग तो आपको समाज में शायद कहीं एक दो देखने को मिल जाएं या ना भी मिले, लेकिन इसके विरुद्ध जो शब्द है वो है देह परायण जीवन, अर्थात अपने आप को देह समझना या शरीर समझना, जैसा कि हम लोग आमतौर पर समझते हैं, मेरा एक विशेष नाम है, मेरा एक विशेष रूप है, विशेष साइज है, सारी डिटेल्स मैं शरीर की जानता हूं जो कि मेरी डिटेल्स है। तो इस देह को मैं अपना स्वरूप समझता हूं और संसार में सुख प्राप्त करने की कोशिश करता हूं, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं सर्विस कर रहा हूं, चाहे मैं कोई एजुकेशन ले रहा हूं, जो कुछ भी मेरा क्रियाकलाप संसार में है उसका उद्देश्य एक ही है कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। तो जब इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा मैं सुख प्राप्त करने की, सुख भोगने की कोशिश करता हूं और वही मेरे जीने का उद्देश्य होता है, इसको कहते हैं देह परायण जीवन। लेकिन कुछ ऐसे जागरूक इंसान, कुछ ऐसे जागरूक लोग भी, विचारवान लोग भी आपको समाज में देखने को मिलेंगे जिनकी नींद टूट चुकी है, अर्थात संसार में मनुष्य सुखी जीवन व्यतीत करता है या कर सकता है ये निश्चय जिनका टूट चुका है। उनका निश्चय दूसरा ही हो गया, जैसा कि सब कुछ निर्णय देते हैं नानक दुखिया कुल संसार, मां जी की वाणी कह रही है राजा दुखिया राणा दुखिया दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया सो भया जिस शोभा पाई करता। तो सत्पुरुष निर्णय दे रहे हैं कि संसार में जो भी मनुष्य आया है उसने संसार में दुख ही पाया है। आप कहोगे मेरे जीवन में बड़े सुख हैं, आप वो सुख गिरा भी सकते हो, लेकिन यदि कोई व्यापार करे, व्यापार करने के पश्चात उसको प्रॉफिट तो हो रहा है, किसी को 10,000 रुपये महीने का हो रहा है, किसी को 10,00,000 रुपये महीने का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यदि पूरे साल की बैलेंस शीट देखे वो, तो उसमें 30,00,000 का घाटा नजर आ रहा है। बैलेंस शीट 30,00,000 का घाटा बता रही है, कि जब मुझको जिस महीने में 10,00,000 प्रॉफिट हुआ था मुझको वो याद है, मुझको 10,00,000 प्रॉफिट मिला था। तो पूरी बैलेंस शीट देखकर तो आप इस निर्णय पर पहुंचो, जो ये बिजनेस कर रहा हूं ये घाटे का सौदा है, इसलिए इसको छोड़ने में ही भला है या इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत। तो सत्पुरुष जब जो कोई बात कहते हैं तो पूरे जीवन की बात करते हैं। साधारण रूप में हम देख लें, कुछ लंबे चौड़े विचार की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही साधारण रूप में देख लें। हमको अपना बचपन याद होगा या अपने बच्चों का तो बचपन याद रही, 5 वर्ष तक की आयु का बालक, हमारा ये अपना अनुभव बताता है कि उसके अंदर केवल अज्ञान ही होता है, जिंदगी कोई समझ नहीं होती उसके अंदर। मां उसका पेट भरती है, कुछ भी हो जाए बालक का पेट वो जरूर भरेगी, लेकिन हम रात दिन देखते हैं कि बच्चे खाने पीने की चीजों के लिए कितना परेशान होते हैं, कितना रोते हैं, उसके बाद वो खेलने के लिए कितना रोते हैं। माता पिता के बंधन में रहना नहीं चाहते, आजादी चाहते हैं। यदि बालक का 5 वर्ष तक का जीवन देखें हम, जब बड़े हो जाते हैं तो बालक बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसी कल्पना होती है कि कैसा आजादी का जीवन है देखो, लेकिन जब वो पलते हैं, 5 साल तक मां उनको पालती है तो मां ही जानती है कि कितना प्रेशर रहता है उनको पालने। तो दूर से देखने में वो बालक का जीवन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अनुभव के आधार पर देखने में ये बेचैनी से भरा हुआ, अज्ञानता से भरा हुआ, ये दुखी जीवन है। बालक भी सोचता है, जो बड़े बच्चों को देखता है वो सोचता है मन के अंदर, मैं भी 10 साल का हो जाऊंगा तो मुझको भी बाहर घूमने की परमिशन मिल जाएगी, मैदान में खेलने की परमिशन मिल जाएगी, वो बड़ा होना चाहता है। लेकिन जब 5 किलो का बस्ता उसके सिर पर लाद दिया जाता है, उसके कंधे पर लाद दिया जाता है, अब बालक से पूछो कि वो खेल के दिन उसके छीन गए और पढ़ाई का बोझ उसके सिर पर आ गया, तो हर क्लास जहां वो 6th क्लास पास करी उसने, उसके बाद हर क्लास वो किस बोझ के साथ उसका वो पार करता है। हर वर्ष उसको याद रहता है कि अब 7वीं कक्षा आएगी, 8वीं कक्षा आएगी, फिर 9वीं कक्षा आएगी। इस बेचैनी से वो हर क्लास को पास करता है, इतना प्रेशर वो बर्दाश्त करता है, और जब बड़ा हो जाता है तो एक ही उसके अंदर इच्छा होती है, तब पढ़ाई छूटेगी। अब पढ़ाई अभी छूटी नहीं है, आगे का बोझ उसके दिमाग पर चढ़ जाता है, कैरियर का, मैंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, जो भी लाइन सेट करनी है, उस कैरियर के लिए वो पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई का पीरियड विचार करके देखो, क्या वो सुखरूप जीवन है? कितने कंपटीशन लड़कों को देना पड़ते हैं, बच्चों को देना पड़ते हैं आज, कितने तनावों को गुजरना पड़ता है। तो हम उसको जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो जवानी का जीवन हमको याद आता है, क्या बढ़िया जवानी के दिन थे, लेकिन जब जवानी में थे उसका विचार करके तो देखो इतना बोझ लेकर जीते। चलिए वो भी वक्त निकल गया, पढ़ाई पूरी हुई, जॉब भी मिल गया, अब आजकल के लोग साधारण रूप में देख लें, मान लिया बैंक की ही नौकरी है या कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री की सर्विस है, तो एम्प्लॉय से पूछ कर दे कि घर से बेचारा सुबह निकलता है, रात्रि को घर में घुसने को मिलता है, तो दिन भर उस जॉब का बोझ रहता है, फिर आगे प्रमोशन की चिंता रहती है, सैलरी बढ़ने की चिंता रहती है, क्योंकि प्रारंभ में कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अच्छी सैलरी नहीं देता। तो हर मामले में उसके अंदर एक टेंशन, एक बोझ बना रहता है। तो गहराई से विचार करके देखा जाए तो क्या ये सुखी जीवन है? और इसके बाद फिर परिवार बसाने की चिंता हो जाती है, शादी की याद आती है, चलिए शादी भी हो गई, उसके बाद बच्चे भी हो गए। तो हम सब गृहस्थी लोग हैं, हम जानते हैं कि बच्चों को पालना, गृहस्थी बसाना, इसमें क्या केवल सुख मिलता है, सुखी जीवन है? हर सुख जो जिसके लिए आप प्रयास करते हो वो अपने साथ कितना बड़ा बोझ लेकर आता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है कि घर में आजकल एक या दो बच्चे होते हैं और माँ बाप का 20-25 वर्ष का वर्ष उनका कैरियर सेट करने में लग जाता है। दो बच्चों को भी पालना आजकल शहरों में आसान काम नहीं है। तो हर आयु या हर हमारे जीवन की पोजीशन मेरे ऊपर बोझ डाल रही है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझको पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसके लिए चिंता करनी पड़ती है, उसके लिए मैं परेशान भी होता हूं। तो बताइए, यदि ईमानदारी से देखें तो इसी निर्णय पर पहुंचेंगे, ये जीवन घाटे का सौदा है, इसमें सुख कम है, दुख चिंता ज्यादा है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा था कि बैलेंस शीट जब देखो साल भर के बाद कि 10 लाख प्रॉफिट तो हुआ था एक महीने में, लेकिन बैलेंस शीट देखी तो 30 लाख का घाटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सत्पुरुष इस दृष्टिकोण को सामने रखते ही ये बात कह रहे हैं कि राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार। बड़े अच्छे ख्वाब देखते हैं हम, कोई IAS ऑफिसर बन जाए, बड़ा नाम होता है उसका, अरे कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो IAS बनना चाहता है। लेकिन मान लिया कोई IAS DM बन गया, और हम सब लोग जो मैनेजमेंट जानते हैं वो जानते हैं कि DM की कुर्सी पे बैठा इंसान इस तनाव में जीता है, कितनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर होती है, गवर्नमेंट का कितना फोर्स उसके ऊपर होता है, हर चीज के लिए जिम्मेदार DM। तो क्या ये सुख का जीवन है? सुख तो उसे कहते हैं जब निश्चिंत होकर आपको सुख प्राप्त हो जाए, कोई चिंता फिक्र ना हो। यदि चिंता फिक्र सिर पर लगी हुई है, उसके साथ यदि सुख भोग भी रहे हो आप, उस सुख का आनंद नहीं है। सुख तब आपको अच्छा लगता है जब आप निश्चिंत होते हैं, कोई चिंता फिक्र नहीं है और फिर भी सुख मिल रहा है आपको, वो सुखी जीवन। इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी संसार में सुख तो है लेकिन दुख मिश्रित सुख है। और वाणी भी कह रही है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट, ये सोचना है। एक दिन की बात आपको बताऊं, अपने अनुभव, क्योंकि अनुभव से चीजें जल्दी सीख लिया। एक दिन मेरी बेटी का फोन आया मेरे पास, मैं उससे बात कर रहा था, बात करते करते उसने वो फोन जो है अपनी बेटी को पकड़ा लिया, अर्थात मेरी ग्रैंड डॉटर को। अब वो क्योंकि सर्विस में है एक इंटरनेशनल कंपनी में, अच्छा कैरियर है, लेकिन मेरी दृष्टि उसके अच्छे कैरियर पर नहीं थी, मेरी दृष्टि यह थी कि इसको अध्यात्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए। क्योंकि अपनी डॉटर के मामले में तो मैंने देखा कि जैसे हर सबके जीवन में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, कहीं कोई चीजें सुख का कारण बनती है, कोई दुख का कारण बनती है, लेकिन बेचैनी सबके जीवन में बनी होती है। तो मैंने उसको शुरू से ही अध्यात्म का मार्ग सिखाया और उसने रुचि भी ली, और मैं ये कह सकता हूं कि गहराई से वो अध्यात्म को समझती है, उस मार्ग पर चलने वाली है। तो इसलिए उसके अंदर भी इच्छा थी कि मेरी बेटी भी इस अध्यात्म विद्या को सीखे, उसकी कोई रुचि नहीं थी उसमें। आम जैसे शहरों में लोग होते हैं, उसका भी वैसी टेंडेंसी थी। तो मेरे मन में भी ये बात बनी रहती थी, वो कहती थी पापा जी आप ही इसको लगा सकते हो इस मार्ग पर। तो मैं रास्ते सोचता था कि कैसे लगाया जाए, मुझको मौका ही नहीं मिलता उससे बात करने का, उसके पास रहने का। तो चांस की बात थी, जब उसने फोन उसको दे दिया तो बात शुरू हो गई लाला जी के साथ। बात करते करते 5-7 मिनट मैंने जनरल बात करी, उसके बाद मेरे दिमाग में वही सूत्र आया कि इसको कैसे प्रेरित किया जाए इस मार्ग पर चलने के लिए। तो मैंने कहा भाई एक चीज बताओ, सर्विस तुमको कैसी लग रही है? सर्विस तो बड़ी अच्छी है। तो बोली नाना जी सर्विस तो अच्छी है लेकिन टेंशन बहुत। मैंने क्यों? बोली सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक तो मुझे जाना पड़ता है, बॉम्बे है, बड़ा लंबा रास्ता भी है, और फिर आते आते भी 9:30-9:10 तक बच जाते हैं। बस जब मैंने उसकी ये बात सुनी, मैंने कहा अच्छा एक चीज बताओ, तुम ग्रेजुएशन करने के लिए चंडीगढ़ गई, वहां तुमने ग्रेजुएशन किया, तो वो जो तुम्हारा ग्रेजुएशन का पीरियड था या वहां तक की जो एजुकेशन का पीरियड था, तुमको कैसा फील होता? वो कहते थे नाना जी बस यही होता था कि क्लास पास हो जाए, ये कोर्स पूरा हो जाए, फिर घर वापस जाए। तो मैंने कहा वो सुख के दिन थे या तनाव के दिन थे, यानी कि सोच के बता ना। तो ये कहना तो यही पड़ेगा तनाव भरे दिन थे, सुख के दिन तो नहीं कह सकते। चलो कोई बात नहीं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिला। तो मैंने कहा वो पीरियड बताओ कैसा बीता? बोली उसको भी मैं सुख के दिन तो नहीं कह सकता, दिमाग में हमेशा बोझ रहता था। मैंने कि क्या बोझ रहता था? बोली अच्छी सर्विस मिल जाए किसी तरह से, सर्विस भी मिल गई या अच्छी कंपनी भी मिल गई। तो मैंने कहा आप बताओ जो ख्वाब तुम्हारे अंदर था वो भी पूरा हो गया तुम्हारा, अब तुम कह रही हो कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक सर्विस का तनाव रहता है, एफर्ट्स का तनाव रहता है कि सुबह सारी नींद छोड़कर अपना आराम छोड़कर ऑफिस की तैयारी करनी पड़ती है और वहां से घर आने की जल्दी होती है, घर में जाके आराम मिलेगा लेकिन आराम मिलता नहीं। तो मैंने कहा कि अब फाइनल निर्णय बताओ, ये फोन पर ही बात हो रही है, मैंने कहा फाइनल निर्णय बताओ, क्या भविष्य में तुमको ये होप है कि सर्विस के इस तनाव से मुक्त हो पाओगी? क्योंकि अभी तो कैरियर तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, आगे कहां तक जाएगा पता नहीं। मैंने कहा सोच के बता ना। तो निर्णय उसने ये दिया कि तनाव से मुक्त होने की कोई होप नहीं। जब उसने खुद अपना निर्णय दिया तब तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैंने तुम्हारी मम्मी को इस सांसारिक एजुकेशन के साथ साथ आध्यात्मिक एजुकेशन भी दी, और जब उसकी एजुकेशन पूरी हुई और जब उसकी मैरिज हुई, बीच में 2 वर्ष का पीरियड मिला मुझको, मैंने उसको दो वर्ष खाली रखा, तो खाली रखकर केवल आध्यात्मिक एजुकेशन। तो मैंने कहा अब तुम बताओ, क्योंकि तुम उनके पास रहती हो, कि वो जो आध्यात्मिक एजुकेशन उनको मिली और पारिवारिक जीवन में जो तनाव जो टेंशन्स उनको भोगने पड़े उसमें क्या चीज उनके काम आई? ये जो आध्यात्मिक विद्या मैंने सिखाई थी वो काम आया, या जो पैसा जो संसार की चीजें हैं वो उनके काम आए? तो उसका अपना रिप्लाई था, ये बात तो ठीक है कि मम्मी को मैं देखकर इस निर्णय पर पहुंची हूं कि ये जो अध्यात्म की सोच है इससे मनुष्य बड़ी मुसीबतों से बच जाता है और दुखों के वक्त भी उसके अंदर मेंटल बैलेंस बना है। मैंने कहा कि अब बताओ क्या तुमको इस एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इस एनालिसिस से वो इमीडिएटली तैयार हो गई, नहीं पापा जी, वो नाना जी, कि इसकी जरूरत मुझे भी है और मैं इसको सीखूंगी। तो मैंने कहा कि अब तुम बरेली आना 5 दिन का टाइम लेकर, ताकि तुमको तुम्हारी आध्यात्मिक एजुकेशन के लिए तुमको एक कोर्स करवाया जाए जो कि बरेली आश्रम होता है। अब बताइए वो मॉडर्न लड़की जो मम्मी की बात भी नहीं सुनती थी, मेरी बात भी टाल देती थी, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पर जब उसको ये बात कही गई इमीडिएटली उसने स्वीकार कर ली। तो सत्पुरुष जो है वो भी हमको इसी बात के लिए कन्विंस करना चाहते हैं, वाणी के द्वारा, विचार के द्वारा, जीवन के द्वारा, कि संसार दुखरूप है। वैदिक काल से ये निर्णय सत्पुरुषों का चलाया है, दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्ते, कि मत भूलो कि सब कुछ दुख ही है। हम क्या समझते हैं, दुख के साथ सुख भी है, लेकिन वो सब कुछ दुख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सुख कम है दुख ज्यादा है, इसलिए वो निर्णय ले रहे हैं कि सब कुछ दुख ही है। जब ये जीवन घाटे का सौदा है, इसमें दुख ज्यादा है सुख कम है, संसारियों की मजबूरी तो ये है, उनको उनके लिए दूसरा रास्ता कोई खुला ही नहीं है, लेकिन हम सत्संगी लोग हैं, हमको ईश्वर ने मौका दिया है ऐसे स्थान पर आने का जहां हम जीवन के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। तो हमारे लिए ये बात है शास्त्रों की कि दुखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगान निवर्तय, तो कह रहे हैं कि सब कुछ दुख ही है ये मत भूलो। तो जीने का डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, कौन सी दिशा बता रहे हैं, काम भोगान निवर्तय, कामनाओं और भोगों से निवृत्ति प्राप्त हो, यह है वे ऑफ लाइफ। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको ईश्वर परायण जीवन की ओर मोड़ना है, और मेरा जीवन कहां जा रहा है, देह परायणता की ओर जा रहा है, देह के द्वारा मैंने सुख भोगने की ओर मेरा रुझान है, मेरी बुद्धि वहां खड़ी हुई। सत्पुरुष मेरी इस गलती को समझ रहे हैं, इसीलिए वो हमारे ऊपर उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं, कि हमको वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के आधार पर मेरी बुद्धि भी इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि वास्तव में संसार में दुख कम है, वो दुख ज्यादा है सुख कम है, इसलिए मैंने उस मार्ग को सीखना है, उस मार्ग को अपनाना है जहां इस सुख दुख के चक्र से मैं मुक्त हो जाता हूं, उसको हम कहते हैं शांति और आनंद। वो शांति और आनंद इस देह के अंदर है, बाहर नहीं है। जिस प्रकार आप जानते हो कि बेचैनी कहां है, बेचैनी संसार में नहीं है, कोई संसार में बेचैनी देख रहा है तो उसे गलत फहमी, बेचैनी मेरे मन के अंतर्गत है और इस बेचैनी से मुक्त होने का रास्ता भी अंतर्गत है। इसलिए सत्पुरुष हमको एक दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले तू ये सीख, तू जीव है जो मन के कारण परेशान है, तू देह नहीं है, देह साधन है, जैसे सुख प्राप्त करते हैं तो कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हैं तभी तो सुख मिलता है, तो देह सुख प्राप्ति का साधन है, लेकिन मेरे मन की इच्छा जब पूरी नहीं होती है संसार में, मैं जानता हूं कि मेरे मन में बेचैनी होने लगती है, अर्थात मन के द्वारा मैं बेचैन होने लगता हूं, जिसको दुख कहते हैं। और मन की इच्छा जब पूर्ण हो जाती है तब उसको सुख मिलता है, मैं सुखी अनुभव करता हूं। तो सत्पुरुष कहते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये आता जाता रहता है, इसलिए मनुष्य की बेचैनी परमानेंट कायम रहती है। इसलिए वो तीसरा रास्ता बताते हैं, वो कहते हैं अध्यात्म का रास्ता, ईश्वर का रास्ता। ईश्वर आनंद रूप है, ईश्वर ज्ञान रूप है, और ये बात सत्पुरुष के जीवन के द्वारा पता लगती है। ऐसा कोई मनुष्य आपके सामने ही ना हो, महाराज जी के पास क्या था? सब जानते हैं कि महाराज जी की खुराक क्या थी, एक वक्त चाय पिया करते थे, ये उनकी खुराक। दो जोड़ी कपड़े हुआ करते थे, एक पहनते थे, कभी 15 दिन बाद 18 दिन बाद, जो भी था उनका नियम, 3 हफ्ते बाद दूसरा वस्त्र बदलते थे। रात को सोते नहीं थे, पानी भी नहीं पीते थे, दूध के साथ या चाय के साथ जो पानी चला गया वही पानी चला गया, अलग से कोई पानी नहीं। तो ऐसा सत्पुरुष जिसके पास बाहर से कुछ भी नहीं है, सुख भोगने का कोई साधन नहीं है, उसकी समाधि लगी रहती। समाधि का मतलब होता है कि अंदर जो कुछ भी मुझको प्राप्त है, जो कुछ मैं अनुभव कर रहा हूं, उस अनुभव से मैं इतना संतुष्ट हूं कि मैं अपने इस प्रिय शरीर को ही भूल जाता, इसका मुझे होश ही नहीं रहता, मैं गफलत में नहीं पड़ रहा हूं, मैं होश में हूं, पूरे होश में हूं, और उसका इतना आनंद है कि मैं इस अपने प्रिय शरीर को भूल जाता। ये ईश्वर परायणता की पराकाष्ठा है। तो गुरु का जीवन ये सिद्ध कर रहा है कि अंदर कोई वस्तु ऐसी है जिसमें इतना आनंद है कि शरीर को ही भूल जाता है। तो सत्पुरुष के जीवन के द्वारा ये बात सिद्ध होती है कि ईश्वर है और वास्तव में वो आनंद रूप है, शांति रूप। उसके लिए महाराज जी एक सूत्र दे रहे हैं, बातें सूत्र से समझ में आती हैं। इसलिए सत्पुरुष का एक वचन भी, एक लाइन भी बड़ी कीमती होती है। महा जी कह रहे हैं समता विलास में, जब ईश्वर प्रायणता की परिभाषा लिख रहे हैं, ईश्वर प्रायणता है क्या, वो कहते हैं कि इंद्रियों के भोगों से असंग होना ही ईश्वर प्रायणता है। इंद्रियों के भोगों से असंग होना ही ईश्वर प्रायणता है। अब विचार करके देखो, ये दो अपोजिट मार्ग है, नहीं जैसे दिन और रात अपोजिट है। मेरा जीवन, मेरी एजुकेशन, मेरा कर्म, सब कुछ इंद्रिय भोगों को बढ़ाने के लिए। और सत्पुरुष क्या कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला है इंद्रियों के भोगों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए। जो वेद कह रहा है, उपनिषद कह रहा है कि काम भोगान निवर्तये, कामना और भोगों से निवृत्ति प्राप्त करो, यह है ईश्वर प्रायण जीवन। गीता, उपनिषद, वेद ईश्वर प्रायण जीवन की बात कह रहे हैं ना, महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं, आज के युग में महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं, बात में कोई अंतर नहीं। तो क्योंकि मन आपका कहां दौड़ रहा है, हम सब जानते हैं मन मेरा संसार में दौड़ रहा है, क्यों, क्योंकि संसार में उसको सुख नजर आ रहा है। लेकिन जब हम अध्यात्म विद्या पढ़ते हैं, अध्यात्म विद्या सीखते हैं, तब हमारी बुद्धि का निर्णय बदलता है, तब उसको ये बात समझ आती है कि संसार में तो मैं कभी सुखी हो ही नहीं पाऊंगा, कभी चैन से जी ही नहीं पाऊंगा, यहां रहकर मुझको कभी संतोष प्राप्त होने वाला नहीं। लेकिन सत्पुरुष पूर्ण संतुष्ट, उसको कोई तकलीफ नहीं है, तो उसलिए सत्पुरुष का जो ज्ञान है वो हमारी आंखें खोलता है। इसलिए मां जी कह रहे हैं प्रेमी, जब इंद्रियों के भोगों से तुम्हें असंग होना है, तब तुझको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि ऋषि किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने को कहते हैं। उसके लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, केवल महर्षि रमण का है, वो गाइड कर रहे हैं इस मामले में, ध्यान से सुने। जब तक अपने को जीव मानते हो, जब तक अपने को जीव मानते हो, देखिए हम पढ़ने में सुनने में कई बार गलती कर जाते हैं, लेकिन सत्पुरुष जो वर्ड यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक विशेष अर्थ होता है। जब तक अपने को जीव मानते हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि देह की तो बात ही यानी हो रही, वो पहले से ही जिसको वो ज्ञान दे रहे हैं ऋषि, जिस शिष्य के आगे उन्होंने ये बात कही होगी, वो पहले से ही जानते हैं, ये इतनी समझ उसके अंदर है कि मैं देह हूं, इस अज्ञान में नहीं फंसूंगा। इतना ज्ञान तो है कि मैं जीव हूं, लेकिन सांसारिक जीवन के कारण या दैहिक जीवन जो मेरा है इसके कारण मैं बेचैन हूं। तो कहते हैं कि जब तक अपने को जीव मानते हो, ईश्वर में आस्था रखकर उसकी पूजा करते हो, संसार में लोग नहीं करते, ईश्वर में आस्था होती है, किसी ना किसी रूप में ईश्वर की पूजा करते हैं, फिर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है। आपकी यदि यह पूजा ईश्वर की निष्काम रूप में है या ईश्वर भक्ति के रूप में है, तब वो प्रभु एक कृपा करते हैं आपको। क्या कहते हैं? फिर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता है। ये अगली सीढ़ी, आपका संबंध किसी पूर्ण गुरु से बनता है, जैसे हमारा संबंध महात्मा मंगलाराम जी से बना हुआ, हमने बनाया नहीं है, हमको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली, ऐसा मौका मिला कि हमारा संबंध उनके साथ बन गया। फिर क्या होता है? कहते हैं फिर गुरुपरायण जीवन से वो आत्मा के रूप में प्रकट होता है। कौन? वो ईश्वर जिसकी तुम भक्ति करते थे, उपासना करते थे, पूजा करते थे, वही ईश्वर गुरु रूप में प्रकट हुआ। और गुरु ने क्या सिखाया? जो कुछ, जैसे महाराज जी ने पांच नियम दिए, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण, और सत्सिमरण के लिए हमको महामंत्र दे दिया, पूरे विश्व के लिए दे दिया। जो भी महाराज जी को गुरु रूप में स्वीकार करता है, उनके मार्गदर्शन अनुसार चलकर ईश्वर प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए पूरा प्रोग्राम है, लिखित प्रोग्राम है, समता विलास भी उपलब्ध है, वाणी भी उपलब्ध है, कोई संशय की बात ही नहीं, पूरी व्यवस्था ईश्वर करता है। तो फाइनल बात कह रहे हैं कि फिर वो गुरु प्राण जीवन से वो आत्मा के रूप में प्रकट होता, वो ईश्वर जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, मुझको पता नहीं, वो मेरी ही आत्मा है। और आत्मा का बोलता है कि मैं स्वयं, उसकी इंग्लिश में सेल्फ बोलते हैं, आत्मा को सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ का मतलब है मैं स्वयं, अर्थात मैं जीव नहीं, जीव भी नहीं हूं, पहले तो मैं देह बना घूम रहा था। तो सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा मुझको फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि मैं समझ गया मैं देह नहीं हूं, मैं जीव हूं, जो देह के कारण परेशान होता है, संसार के कारण परेशान होता है, मन के कारण परेशान होता है। तो फिर बाद में जब गुरु प्राण जीवन व्यतीत करता हूं, इसको गुरु भक्ति कहते हैं, गुरु भक्ति का मतलब गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार संसार में जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जो पांच नियम महाराज ने दिए, इस पांच नियम को अपनाने के रूप में, इसको जो आत्मिक उन्नति के नियम है, अर्थात आत्मा की ओर अग्रसर होने के लिए नियम है, तो इसके अनुसार जब मैं अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता हूं, तब क्या होता है, मेरे अंदर अगला निश्चय आता है कि मैं जीव भी नहीं हूं, मैं खुद आत्मा हूं। अहम आत्मा गुडा के, जिसको अर्जुन के लिए कह रहे हैं भगवान कृष्ण, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं और तू भी आत्मा है, इसलिए तू मेरी बात मानता है तो तुझको आत्मदर्शन प्राप्त है। तो गुरु परायणता के साथ साथ क्या होता है, मैं क्या करता हूं, अपने अंदर उस मार्गदर्शन के अनुसार प्रभु का स्मरण करता हूं, महामंत्र का जाप करता हूं, वो जो प्रभु रूप है, ये प्रभु के ही अवतार है। प्रभु पहले गुरु की देह के रूप में संसार में आया मार्गदर्शन करने के लिए, फिर वो मंत्र रूप में आया स्मरण करने के लिए। अंदर मैं ईश्वर का स्मरण करूंगा कैसे? कोई मूर्ति तो है नहीं, बाहर तो मैं मूर्ति की पूजा भी करता रहता, अंदर कैसे पूजा करूंगा उसमें? इसीलिए प्रभु मंत्रावतार के रूप में संसार में प्रकट होते हैं, ताकि मैं अंदर उनका संग कर सकूं। इसीलिए उपनिषद कह रहा है कि नाम ब्रह्मेति उपास्ते, नाम को अर्थात मंत्र को ब्रह्म जानकर उपासना करनी चाहिए। जब मैं बाहर में ये भोगों से परहेज करता हूं और जो हमारा आवश्यकता है शरीर की, उसकी पूर्ति के लिए तो मैं कमाई करता हूं, पूर्ति के लिए मैं सामान इकट्ठा करता हूं, लेकिन शौक पूरे नहीं करता। तो अंदर जब मैं उस प्रभु का स्मरण करता हूं, उसको अपना मालिक जानकर धीरे धीरे वो जो चेतन सत्ता है, वो जो ईश्वर सत्ता है जो मेरे रोम रोम में व्याप्त है, जिसको महाराज जी नाद कहा करते हैं, जिसको महाराज जी निरत कहा करते हैं, तो जीव जब सिमरन करता है उस मंत्र का, उस मंत्र के बल से इस देह के अंदर वो आत्मानंद जागृत होता है, वो आत्मशक्ति चेतन सत्ता जागृत होती है। तब ये जीव का होश, क्योंकि जीव है ही होश रूप, जीव खुद कॉन्शियसनेस है, जिसको सुरत भी कहा जाता है, तो उस समय ये होश, उस अंदर वो चेतन सत्ता जब जागृत होती है, उसके प्रति ये होश उसका बना रहता है। मंत्र के बाद मंत्र का जो दूसरा रूप है वो नाद के रूप में, कुंडलिनी के रूप में या अंदर के रूप में अंदर अनुभव होता है। तब वही शक्ति, वही आंतरिक गुरु इसको फाइनल मंजिल तक ले जाता है, जिसको आत्मा कहते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे क्या होता है, संसार में रहते हुए जब मैं पूर्ण गुरु पर विश्वास करता हूं, उसका आश्रय लेता हूं, तो उसके अनुसार मैं गुरु प्रायण जीवन व्यतीत करता हूं। गुरु प्रायण जीवन आपको फिर कहां ले जाता है, ईश्वर प्रायण जीवन की ओर ले जाता है, वो आंतरिक जीवन है। और ईश्वर प्रायण जीवन जब शुरू होता है, ये खत्म का होता है, आत्मदर्शन के रूप में खत्म होता है, जहां जाके मैं सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में जीव हो जाता हूं। ओम ब्रह्म सत्य।